हरे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो रामायण की इस कथा में अब तक हम लोग भगवान श्री राम के प्राकट्य के पूर्व की घटनाओं पर चर्चा कर चुके हैं, कैसे वाल्मीकि मुनि ने इस रामायण काव्य की रचना प्रारंभ की, और फिर पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे दशरथ महाराज ने यज्ञ किया और यज्ञ में जो पायसम जो खीर उन्हें प्राप्त हुई, फिर उसको उन्होंने अपनी तीनों रानियों को बांट दिया और तीनों रानियों ने फिर गर्भ धारण किया। भगवान कौशल्या के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं, तो उससे आगे हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो भगवान राम का प्राकट्य होना है। भगवान राम के अवतार के कई कारण थे। भगवान किन कारणों से इस पृथ्वी पर आए? एक कारण तो था कि वो देवताओं की प्रार्थना को सुनकर आए थे। देवताओं ने प्रार्थना की, हम लोगों ने चर्चा की थी कि जब भूमि देवी एक गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गईं, तो फिर वे सब गए थे भगवान से प्रार्थना किया देवताओं ने कि रक्षा कीजिए। तो देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान ने एक साधारण मनुष्य का रूप लेना स्वीकार किया। अब देवता ये सोच सकते थे कि हमने प्रार्थना की है भगवान से, तो भगवान अभी ही क्यों नहीं मार देते रावण को? अब वो जन्म लेंगे, फिर बड़े होंगे, फिर जाएंगे, फिर करेंगे, कितने वर्ष बीत जाएंगे। लेकिन देवताओं ने ऐसा नहीं सोचा। देवताओं ने बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा से भगवान के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, बड़े हर्षित हुए वो। तो ये हमें सिखलाता है कि जब हम भगवान के पास आएं, भगवान से कुछ मांगने के लिए जब हम भगवान के पास आते हैं तो फिर हमें भगवान के द्वारा दिए गए वरदान को प्रेम से स्वीकार कर लेना चाहिए। अर्थात अगर भगवान तुरंत ही हमें कुछ दे देते हैं तो भी ठीक है, भगवान नहीं देते हैं काफी समय बाद देते हैं तो भी ठीक है। देवताओं ने भगवान को त्यागा नहीं कि अरे आप तो अभी कर सकते हैं, अभी तुरंत जाइए, अभी क्यों नहीं जा रहे हैं। नहीं, जब हम भगवान के पास आते हैं तो हमें भगवान के अनुसार चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसा हम चाहते हैं भगवान को वैसे आचरण करना चाहिए या भगवान को वैसे वरदान देना चाहिए। ये आसुरी प्रवृत्ति है, रावण इत्यादि की प्रवृत्ति है। वो चाहते थे जैसा मैं चाहता हूँ वैसा वरदान मुझे मिले। लेकिन वरदान मांगने की सही पद्धति क्या है? वरदान मांगने की सही पद्धति ये है कि हम भगवान से कहें कि जो हमारे लिए श्रेय हो, श्रेयस्कर हो, आप उसे कीजिए, बस। फिर चाहे हमें कष्ट में डालना हमारे लिए श्रेयस्कर हो तो आप कष्ट में डालिए, हमें सुख प्रदान करना हमारे लिए श्रेयस्कर हो तो आप सुख प्रदान कीजिए, हमारी मृत्यु अगर हमारे लिए श्रेयस्कर हो तो हमारी मृत्यु तुरंत आ जाए। ये भक्ति है। तो जब भगवान के पास आए तो हमें अपने अनुसार भगवान से वरदान प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये व्यापार है अगर हम ऐसा करते हैं। लेकिन भक्ति क्या है? जैसा भगवान चाहे। तो इसलिए देवी देवताओं ने प्रार्थना की और भगवान ने कहा ठीक है, आगे चलकर मैं दशरथ के पुत्र के रूप में आऊँगा और फिर रावण का वध करूँगा। तो बहुत प्रसन्न हो गए देवता। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही आनंद होना चाहिए कि हम भगवान के संपर्क में आ सके। देवता प्रसन्न इसलिए हुए कि अब वो भगवान की लीलाओं को देख पाएंगे, भगवान के दर्शन कर पाएंगे, भगवान के संपर्क में आ सकेंगे। तो हमें भी बड़ा आनंद होना चाहिए कि हमारा भाग्य है कि भक्तों की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, परंपरा में आए हुए पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से हम भगवान के संपर्क में आ सकें और फिर जैसा भगवान चाहें वैसा हमें करना चाहिए। अर्थात सहनशील होना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि कब भगवान हम पर कृपा करेंगे, और ये विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ एक दिन करेंगे, हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे पूर्व किए गए पापों के अनुसार या फिर भगवान की इच्छा के अनुसार। भगवान को कोई बाध्य नहीं कर सकता कृपा देने के लिए। अगर कृपा देने के लिए बाध्य किया जाए तो वो कृपा नहीं कहलाती। कृपा का अर्थ ही यही होता है कि जहाँ व्यक्ति बिना किसी कारण के, बिना बाध्य हुए, स्वेच्छा से कुछ करता है उसे कृपा कहते हैं। जैसे एक भिखारी भीख मांगता है तो वो बाध्य नहीं कर सकता लोगों को कि मुझे इतना ही देना चाहिए आपको, ये तो भीख नहीं है। भिक्षा क्या है? हाथ फैलाना, फिर जो व्यक्ति ने जो दिया उसको कृपा समझ के स्वीकार करना। तो अगर हम भगवान की कृपा चाहते हैं तो इस भाव में हमें आना चाहिए कि जो भगवान दे उसको स्वीकार करें, और तब हम सही पात्र बनते हैं भगवान की कृपा के। तो कृपा का भिक्षुक बनना ये भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है। हम सबको भिक्षुक बनना चाहिए, याचक बनना चाहिए, कृपा की याचना करनी चाहिए भगवान से, भक्तों से। क्योंकि अन्य बाकी चीजें तो हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिल जाएंगी, लेकिन कृपा कर्मों के अनुसार नहीं मिलती। ये स्मरण रखना चाहिए, भगवान की कृपा किसी कर्म से नहीं मिलती। जैसे कर्मों का नियम है, आप चोरी करेंगे, डाका डालेंगे तो आपको दंड मिलेगा, ये नियम कहलाता है। लेकिन कृपा किसी नियम के अधीन नहीं है, ये भगवान का एक ऐश्वर्य है और भगवान के सारे ऐश्वर्यों का आधार है कृपा, इसलिए वो किसी नियम में नहीं है। कैसे आधार है? भगवान के बहुत से ऐश्वर्य हैं, भगवान की असंख्य शक्तियां हैं, असीमित शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों का प्रभाव या उन शक्तियों का लाभ जीव को तभी होता है जब भगवान कृपा करते हैं, नहीं तो वो तो भगवान की शक्ति है। तो इसीलिए कृपा के भिक्षुक या कृपा का याचक हमें बनना चाहिए और भिक्षा मांगनी चाहिए भगवान से उनकी कृपा के लिए, इस चीज को स्मरण करते हुए कि कृपा किसी नियम के अधीन नहीं है, कोई बाध्य होकर कृपा नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन भक्तों का प्रेम भगवान को बाध्य करता है, और कृपा करने के लिए नहीं, तब भी भगवान कृपा नहीं करते। गोपियों का जो प्रेम था तो उसको देखकर भगवान कुछ नहीं कर पाए, भगवान ने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो भक्तों का प्रेम इतना बढ़ जाता है कि फिर कृपा की कोई सीमा नहीं रहती भगवान के। तो ये भगवान की कृपा है, इसलिए भिक्षुक बनना चाहिए हम सबको, कृपा का भिक्षुक। सदैव जब भगवान के दर्शन करें, भगवान के भक्तों का संग करें, भगवान की सेवा करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, उत्सव मनाएं, इन सब में एक ही भाव, कृपा की याचना। बड़े बड़े उत्सव हम लोग मनाते हैं, जैसे अब जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव आने वाला है, क्या क्या हमारी भावना होनी चाहिए उत्सवों में। बहुत बड़ा उत्सव होगा, बहुत से भक्त आएंगे, हजारों हजारों लोग आएंगे, हमारा भाव क्या होना चाहिए? हर एक आने वाले व्यक्ति से कृपा की याचना, ये भाव होना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में आ रहा है, मानना चाहिए ये भक्त है। बृहद भागवतामृतम में वर्णन किया गया है कि जब गोप कुमार जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां का हर व्यक्ति विशुद्ध भक्त है, चतुर्भुज रूप है, मुक्त जीवात्मा है। तो जब हम लोग देखें जगन्नाथ जी के रथ में हजारों हजारों लोगों को, अगर हमारा भाव ये हो कि हर एक व्यक्ति इस रथ यात्रा में ये भगवान का भक्त है, मुझसे श्रेष्ठ है, मैं हर एक भक्त से याचना करता हूं, कृपा की याचना, जगन्नाथ जी प्रसन्न होंगे, ये भाव उन्हें प्रसन्न करेगा। महाप्रभुर भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीति है न गौर भगवान। चैतन्य महाप्रभु ये वैराग्य चाहते हैं हृदय में, बाहरी वैराग्य नहीं, कपड़ों का वैराग्य नहीं, केवल कपड़े धारण कर लेना, कुछ चिन्ह धारण कर लेना नहीं, हृदय का वैराग्य। तो इसीलिए कृपा की याचना हमें करनी चाहिए, उत्सवों में, भगवान के दर्शन में, सेवा में, कीर्तन में। कीर्तन करते हुए भी हृदय का भाव ये होना चाहिए, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, बड़ा शक्तिशाली नाम है ये, और इस शक्ति की कृपा मुझे मिल सके। नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति, आपने अपनी सारी शक्ति इसमें डाल दी है, इन नामों में, अब इस शक्ति का अंश एक बूंद मेरे हृदय में भी प्रकट कराइए, ये याचना हमें करनी चाहिए। तो हर समय उत्सवों में, कीर्तन में, दर्शन में, सेवा में केवल याचना। तो ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। तो देवी देवताओं की प्रार्थना को, तो ऐसी प्रार्थना को सुनकर भगवान प्रकट होते हैं। तो इस भाव में अगर हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारे हृदय में भी प्रकट होंगे। दूसरा कारण श्री रामचंद्र के प्रकट होने का था कि वो ऋषि मुनियों को आनंद देना चाहते थे, जो दंडकारण्य वन इत्यादि वहां पर तपस्या कर रहे थे, तो रामचंद्र जी चाहते थे कि उनको भी आनंद दिया जाए, इसीलिए वनवास गए और सारे ऋषि मुनि जिन्होंने भी उनका दर्शन किया आनंद में डूब गए, क्योंकि भगवान तो आनंद घन है। और एक कारण आचार्य ये भी समझाते हैं कि वो सीता देवी के साथ एकांतवास करना चाहते थे। वैकुंठ में बहुत सारे भक्त होते हैं, सेवा करते रहते हैं, एकांत नहीं मिलता है, तो फिर रामचंद्र जी ने सोचा चलो एक लीला कर लें, तो फिर वन में जाएंगे और थोड़े समय तो एकांत में रह पाएंगे। तो ऐसे कई कारण हैं श्री रामचंद्र के अवतीर्ण होने के। तो अब काफी समय हुआ, वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि 6 ऋतुएं बीत गई, अर्थात करीब 12 महीने का समय बीत गया। और उसके बाद वो दिन आया जब श्री रामचंद्र जी प्रकट होने वाले थे। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, दिवस मध्य अति शीत न घाम। बताते हैं कि नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, अभिजीत मुहूर्त था, और ऐसे समय में जब दोपहर का समय था, दिवस मध्य अति शीत न घाम, न बहुत धूप थी न बहुत सर्दी थी, ऐसे समय में भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए। वाल्मीकि मुनि ने ये वर्णन रामायण में नहीं किया और बड़े विस्तार से भी वर्णन नहीं किया कि किस प्रकार भगवान प्रकट हुए और क्या क्या हुआ, लेकिन अन्य संस्करणों में इसका बड़े विस्तार से वर्णन है। विशेषतः अध्यात्म रामायण में बताया गया है कि भगवान कैसे प्रकट हुए, क्या रूप था उनका। तो भगवान जब प्रकट हुए तो अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए श्री रामचंद्र, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, ऐसे भगवान प्रकट हुए। बहुत सुंदर समय था, सारे जो देवता थे ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे थे, पूरी जो अयोध्या थी वो सज गई थी और ऊपर से फूलों से भर गई थी। लोग फूल गिरते हुए देख रहे थे लेकिन फूल फेंकने वालों को नहीं देख पा रहे थे, मगर फूलों की वृष्टि हो रही थी जब श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए दोपहर के समय। तो बहुत सुंदर रूप उनका, ऐसा रूप जो बड़े बड़े योगियों के मन को भी हर लेता है। तो ऐसे रूप को भगवान ने कौशल्या के सामने प्रकट किया। अब जब भगवान प्रकट हुए तो स्वाभाविक है कि सब तरफ मंगलमय वातावरण हो जाएगा, सारे ग्रह इत्यादि सब एक मंगलमय वातावरण में रम गए। और जब कौशल्या ने देखा भगवान को चतुर्भुज रूप में, तो उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पण की। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कौशल्या ने अर्पण की। कौशल्या कहती हैं, देव देव नमस्तेस्तु, शंख चक्र गदाधर, परमात्मा च्युतोऽनन्त, पूर्णस्त्वं पुरुषोत्तम। कौशल्या प्रार्थना कर रही है, देव देव नमस्तेस्तु। वो जान गई कि मेरे घर में स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, ये रूप देखा चतुर्भुज रूप। तो कौशल्या ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। पद्म पुराण में भी ऐसा ही वर्णन है कि कौशल्या ने दोनों अपने हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगी, देव देव नमस्तेस्तु। देव देव अर्थात सभी देवों में श्रेष्ठ, देवताओं के भी देव, देव देव नमस्तेस्तु, आपको नमस्कार है। शंख चक्र गदा, आपने शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण किया हुआ है, इसलिए शंख चक्र गदा धरह। और फिर वो उनकी स्थिति का वर्णन करती हैं, आप कौन हैं। देखिए जो कौशल्या की प्रार्थनाएं हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना है, केवल 6-7 श्लोक उन्होंने कहे लेकिन बहुत ज्ञान दिया। तो उन्होंने कहा कि आप परमात्मा हैं, सबके हृदय में वास करते हैं, परमात्मा च्युतोऽनन्त, अच्युत अनंत ये नाम है आपके, अर्थात परमात्मा के रूप में आप सबके हृदय में रहते हैं और आज मेरे सामने प्रकट हुए हैं। आप अपने स्थान से कभी गिरते नहीं हैं, चाहे आप एक साधारण मनुष्य का रूप लें, चाहे आप वैकुंठ में रहें, लेकिन आपकी स्थिति तो दिव्य ही बनी रहती है, अनंत। और आप अनंत हैं। अनंत का अर्थ क्या होता है? भगवान का नाम अनंत क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि भगवान की लीलाएं अनंत हैं, भगवान के गुण अनंत हैं, भगवान की कृपा अनंत है, इसीलिए वो अनंत कहलाते हैं। जिसका कोई अंत नहीं है, न भगवान के गुणों का अंत है, न लीलाओं का अंत है, ना ही भगवान के रूपों का अंत है। असंख्य रूप हैं भगवान के, और उन सब में श्रेष्ठ उनकी कृपा का कोई अंत नहीं है, अनंत कृपा है। और यही कारण है कि हमारे जैसे बद्ध जीव, पापी जीव भगवान का नाम ले पाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आप अनंत हैं, पूर्णस्त्वं पुरुषोत्तमा, और पूर्ण हैं आप। भगवान को पूर्ण कहा जाता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनमें कोई कमी नहीं है और ना ही कभी होती है। अगर भगवान से भगवान के अंश निकल भी जाते हैं तो भगवान में कोई कमी नहीं होती। साधारणतः एक गलत विचारधारा समाज में प्रस्तुत की जाती है कि भगवान एक थे, फिर अलग अलग अंशों में बट गए हैं, फिर हम सब मृत्यु के बाद एक हो जाएंगे, वही भगवान हो जाएंगे। नहीं, भगवान पूर्ण हैं। उनसे जब अंश निकल भी जाते हैं तो भी भगवान पूर्ण रहते हैं। जैसे इस जगत में हम गणित करते हैं तो गणित में लिखते हैं 5 में से 2 गया तो 3 बचा, ये यहाँ का गणित है। लेकिन भगवान के जगत का गणित क्या है? 5 में से 2 गया तो 5 बचा, ये भगवान के जगत का गणित है। क्योंकि भगवान में पूर्णता है, पूर्णस्त्वं पुरुषोत्तमा, और आप पुरुषों में उत्तम हैं। भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान के धाम को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं, जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। तो पुरुषोत्तम, आप पुरुषों में उत्तम हैं। और फिर कौशल्या देवी कहती हैं, बहुत सुंदर इनकी प्रार्थना एक के बाद एक है, कि वैसे तो आप अनंत हैं और आप पुरुषोत्तम हैं, इस जगत के परे हैं, दिव्य हैं, अच्युत हैं, आपका कभी पतन नहीं होता, आप कभी भौतिक जगत का स्पर्श नहीं करते, फिर भी इस जगत का निर्माण आप करते हैं, और इस जगत को आप तीनों गुणों के द्वारा इस जगत को चलाते हैं, इसका निर्माण भी करते हैं और इसका संहार भी करते हैं, लेकिन आप तीनों गुणों के परे हैं। देखिए, कौशल्या देवी एक साधारण स्त्री है, लेकिन फिर भी ये ज्ञान भक्ति का, जब भगवान प्रकट होते हैं तो स्वयं भगवान का ज्ञान भी हृदय में प्रकट हो जाता है। तो कौशल्या देवी प्रार्थना कर रही है कि आपके का आप इस जगत के कारण हैं लेकिन आप परे हैं, तो ऐसी चीज कौन नहीं देख पाता? आगे वो कहती हैं, जो अज्ञानी है, अंधकार में है, अज्ञान में है, वो व्यक्ति आपको नहीं देख पाता, लेकिन जो शुद्ध है, जिसकी चेतना शुद्ध है, वो आपको बड़ा स्पष्ट देखता है। देखिए, कौशल्या देवी भगवान की स्थिति का भी वर्णन कर रही हैं और उन मूर्खों का भी जो भगवान को देख नहीं पाते, इसीलिए अपने अपने विचारधाराओं को वो प्रकट कराते हैं। और उसके बाद कौशल्या देवी बहुत सुंदर बात कहती हैं। उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने स्थिति बता दी भगवान की, फिर कहा कि आप इस जगत का निर्माण करते हैं, इस जगत के परे हैं, तीनों गुणों के परे हैं, लेकिन फिर भी आप जन्म लेते हैं। आप अजन्मा हैं लेकिन आप जन्म लेते हैं, क्या कारण है? आप मेरे गर्भ में आए, आज आप मेरे सामने पुत्र के रूप में प्रकट हो रहे हैं, क्या कारण है? तो वो कारण देती है कि भगवान आप आते हैं, भले ही आप इस जगत के परे हैं लेकिन आप आते हैं इस जगत में, तो आप आते हैं भक्तों की प्रसन्नता के लिए, आप बेच देते हैं अपने आप को भक्तों को, नहीं तो और कोई कारण नहीं है आपका इस जगत में आने का क्या कारण है? आपको संहार करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है, रचना करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है, किसी असुर को मारने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आप वहीं बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन आप बेच देते हैं अपने आप को, भक्तों को। तो केवल एक ही कारण से आप आते हैं, आप मेरे गर्भ में आए तो केवल एक ही कारण, आप ये दिखलाना चाहते हैं कि आप भक्तों के अधीन हैं, अहम भक्त पराधीनो, बस यही दिखलाने के लिए आप आए हैं, और कोई कारण नहीं है। बहुत सुंदर बात कही कौशल्या देवी ने, और सत्य है, भगवान के आने का और कोई कारण हो ही नहीं सकता। भगवान केवल यही दिखलाते हैं, अहम भक्त पराधीनो, भक्त चाहते थे मैं आऊं, मैं आया, क्योंकि भक्तों को आनंद होता है जब भगवान को देखते हैं। भक्त और भगवान का संबंध शाश्वत है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता। हमारा हर जीव का भगवान से एक शाश्वत संबंध है, उस शाश्वत संबंध को पुनर्स्थापित करना यही भक्ति है। तो वो कहने लगी कि आप आए हैं, आप मेरे गर्भ में आए हैं, यही एक कारण है। तो प्रश्न ये हो सकता है कि फिर भगवान को भक्तों के लिए यहां आने की आवश्यकता क्यों है? कौशल्या देवी कहती है कि मैं इस संसार के चक्र में फंसी हुई हूं, आप आए हैं, आप भक्तों के अधीन हैं, इसीलिए यहां आते हैं इस संसार चक्र में, इस प्रपंच में, किस लिए? ताकि मेरा उद्धार हो सके या भक्तों का उद्धार हो सके। तो आप आए हैं, मैं इस संसार में फंसी हुई हूं, लेकिन अब मुझे आपके चरण कमल प्राप्त हुए हैं। और आगे वो कहती है बहुत सुंदर बात, वो कहती है कि हे प्रभु, ये जो आपके चरण कमल हैं, ये जो आपका रूप है, ये सदैव मेरे हृदय में बसा रहे, और इस जगत की माया, इस जगत का मोह कभी मुझ पर प्रभाव नहीं कर पाए। देखिए कितनी सुंदर तरीके से वो बतला रही हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने का क्या प्रक्रिया है, कि हम पहले तो कृष्ण के विषय में ज्ञान लें, कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, श्री रामचंद्र कौन है, उन्होंने ज्ञान दिया पहले, और फिर उस ज्ञान के द्वारा ये चीज जाने, अपनी स्थिति को जाने कि हम कितने इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, आसक्त हैं, और उस आसक्ति के परे जाने का मार्ग श्री कृष्ण श्री राम के चरण कमल। अगर उन चरण कमलों को और उन रूप को, भगवान के इस रूप को हम अपने हृदय में बसा सकें, तो फिर निश्चित है कि माया, इस मोह माया का प्रभाव नहीं होता, इस जगत में फंसते नहीं हम। तो श्री रामचंद्र के प्रति उन्होंने प्रार्थना अर्पण की कि अगर आपके चरण कमल सदैव मेरे हृदय में वास करें, और ये जो रूप आपका है इसको मैं सदैव स्मरण कर सकूं, तो निश्चित है इस जगत की मोह माया मुझे कभी प्रभावित नहीं कर पाएगी। और फिर उन्होंने अंतिम प्रार्थना उनसे की, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरे हृदय में पुत्र स्नेह को जागृत कीजिए और कृपया मेरे पुत्र बन जाइए। अब ये जो चतुर्भुज रूप है, इसको देखकर पुत्र स्नेह जागृत नहीं हो रहा, मैं तो आपको पुत्र के रूप में चाहती हूँ। स्वाभाविक है, अगर कोई भगवान को चतुर्भुज रूप में देखता है, शंख चक्र गदा पद्म, तो पुत्र भाव नहीं आता है, फिर तो केवल हाथ जुड़ते हैं और प्रणाम होता है, प्रार्थनाएं आती हैं जैसे कौशल्या देवी ने की। तो फिर उन्होंने अंतिम प्रार्थना ये की कि कृपया पुत्र स्नेह को जागृत कीजिए, आप मेरे पुत्र बन जाइए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। कौशल्य देवी ने दिखलाया कि अगर हम भगवान के विषय में ज्ञान लेते हैं, भगवान को जान लेते हैं, फिर उनके इस भौतिक जगत को जानते हैं और अपनी स्थिति को जानते हैं, और उसके बाद अगर भगवान की शरण जाते हैं, तो निश्चित है भगवान से हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने भगवान से संबंध स्थापित किया कि आप मेरे पुत्र बन जाइए, तो फिर भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने कौशल्या देवी से कहा, जैसी आपकी इच्छा, मैं प्रकट हो रहा हूँ रावण का वध करने के लिए, मैं रावण का वध करूंगा। साथ ही साथ मेरा जो रूप आपने दर्शन किया, ये आपकी तपस्या के कारण था। आपने पूर्व में बहुत तपस्या की थी मुझे पुत्र के रूप में पाने के लिए, इसीलिए मैं आपका पुत्र बन रहा हूँ, अन्यथा ये रूप को देखना संभव नहीं है। और फिर उन्होंने एक आशीर्वाद दिया हम सब के लिए। हमने ये संवाद आपको क्यों सुनाया, ये इसलिए, जय श्री राधा गोकुलानंद की, कि भगवान ने उसके बाद एक आशीर्वाद दिया। भगवान कहते हैं, संवादम मयो यस्तु पठेत् वा शृणुयादपि सयाति मम सारूप्यम मरणे मत् स्मृतिम लभे। संवादम, ये जो संवाद हुआ, ये जो आपने अभी कहा और मैंने आपसे कहा, ये जो संवाद हुआ, संवादम अयोयस्तु, मेरा और आपका जो संवाद हुआ है, पठेत् वा शृणुयादपि, पठेत् वा जो इसको पढ़ता है, या शृणुयादपि या सुनता है, सयाति मम सारूप्यम, वो व्यक्ति निश्चित ही मेरे ही समान रूप को प्राप्त करता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। मरणे मत् स्मृतिम लभेत, और मृत्यु के समय मरणे मत् स्मृतिम, मेरी स्मृति निश्चित उसको प्राप्त होगी। तो ये भगवान ने आशीर्वाद दिया, तो जो भी इस संवाद को सुनता है निश्चित है वो भगवान के धाम जाएगा। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने ये संवाद सुन लिया, आज के बाद जितने पाप लिखे हुए हैं, जितने पाप पता हैं, वो हम सब करें और कहें कि भगवान ने वचन दिया है, हमें तो धाम में लेके जाना पड़ेगा भगवान को। नहीं, इसका अर्थ ये है कि इस ज्ञान को सुनकर, इस संवाद को सुनकर हम अपने हृदय को शुद्ध करें, इस संवाद को हृदय में बसाएं, उस रूप को जो कौशल्या ने दर्शन किए, अब प्रकट हुए हैं भगवान और जो दर्शन कर रही हैं, तो उस रूप को अपने हृदय में बसाएं, तब निश्चित है। तभी भगवान ने कहा सयाति सारूप्यम, वो जो व्यक्ति है, सयाति मम सारूप्यम, अगर मेरे रूप को उसने बहुत अच्छी तरह से अपने हृदय में बसाया है, तो निश्चित है मृत्यु के बाद मरणे मृत्यु के समय मत् स्मृति, मेरी स्मृति लभते, उसको प्राप्त होगी। तो ऐसे जब भगवान ने कहा और उसके बाद भगवान फिर छोटे से बालक के रूप में कौशल्या की गोद में आ गए और रोने लगे जोर जोर से। और जब रोने की आवाज आई, तो अब तक जो कौशल्या भगवान की दिव्यता का दर्शन कर रही थी, तो अचानक योग माया के प्रभाव से वो सब भूल गई और अपने बच्चे को संभालने लगी। और बच्चे की आवाज़ सुनकर जो दासियां थीं वो भागी दशरथ महाराज के पास संदेश देने के लिए कि पुत्र हुआ है। तो अब सोचिए, दशरथ महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही, क्योंकि इतना आनंद उस समय उन्हें हुआ, भगवान का नाम ही केवल काफ़ी है आनंद देने के लिए। फिर वही भगवान जब दशरथ महाराज के घर में प्रकट हुए, तो क्या आनंद आया होगा दशरथ महाराज को। दशरथ महाराज को बहुत आनंद आया और फिर उन्होंने बहुत से दान किया, बहुत सी गायें, बहुत सा धन दान में दिया, बहुत बड़ा उत्सव हुआ भगवान श्री राम के प्राकट्य का। एक स्थान पर वर्णन है कि असंख्य लोग अयोध्या में आ गए, असंख्य, और दशरथ महाराज ने इतना दान किया कि जो हीरे मोती जवाहरात इत्यादि वो सब सड़कों पर पड़े थे, लोगों के पाँव में आ रहे थे। क्योंकि असंख्य लोग थे और इतना दान वो कर रहे थे और लोगों को चिंता नहीं थी उस दान की। वो तो दान लेने नहीं आए थे, उस समय तो सारे देवी देवता एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर, अयोध्या वासी का रूप लेकर भगवान के दर्शन के लिए आए थे, क्योंकि ये रूप उन्हें भी दिखता नहीं है। वैसे ये रूप तो वैकुंठ में भी नहीं दिखाई देता। वैकुंठ में भगवान का जो रूप है वो शाश्वत है, वो बदलता नहीं है। वहां ऐसा नहीं होता कि भगवान पैदा होते हैं फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, बाल लीला होती है, नहीं, एक ही रूप है भगवान का। लेकिन जब यहां आते हैं पृथ्वी पर तो बालक बनते हैं, तो उसे देखने के लिए सारे देवता आ गए, अयोध्या भर गई। तो इतना दान दिया दशरथ महाराज ने, सड़कों पर पड़े थे हीरे मोती जवाहरात, गायें दान में दी, भूमि दान में दी, और प्रसन्न थे दशरथ महाराज। और बाकी रानियां भी स्वाभाविकतः प्रसन्न थीं। तो फिर रामचंद्र जी का जन्म हुआ, कुछ समय बाद भरत का जन्म हुआ, शत्रुघ्न और लक्ष्मण का जन्म हुआ। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया, और बहुत बड़ा उत्सव भगवान के जन्म का हुआ। बहुत वृद्ध हो चुके थे दशरथ महाराज, और ऐसे समय में ये आनंद का समाचार। दशरथ महाराज का आनंद केवल इसलिए नहीं था कि उन्हें पुत्र हुआ, दशरथ महाराज का आनंद इसलिए भी था कि अब वो अपने कर्तव्य को पूरा कर चुके हैं। अब उन्हें ये चिंता नहीं थी कि उनके बाद राज्य का क्या होगा। तो उन्होंने सोचा कि मेरी जो सेवा भगवान के प्रति थी, एक राजा की सेवा होती है भगवान के प्रति कि वह राज्य की सुरक्षा करे, इसीलिए उसको राजा बनाया जाता है। तो उन्होंने सोचा कि मेरी जो सेवा थी वो अब पूरी हो गई, अब पुत्र हुआ है तो आगे राज्य को संभालने वाला है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तो इसीलिए बहुत प्रसन्न हुए। और फिर वशिष्ठ मुनि इत्यादि ने आकर नामकरण संस्कार किया। पद्म पुराण में बताया गया है कि कैसे भगवान का संस्कार हुए, भगवान की कुंडली बनी। और दशरथ महाराज ने पूछा कि कुछ दोष तो नहीं है कुंडली में भगवान के, मेरे पुत्र के, तो क्या कहते। उन्होंने देखा, बोले अगर इस कुंडली में दोष हो तो फिर ये कुंडली खराब हो सकती है, लेकिन दोष नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने नाम दिए, अभी तक नामकरण नहीं हुआ था, तो चारों को नाम दिए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो ये नाम भी बड़े महत्वपूर्ण थे। वैसे एक स्थान पर कहा गया है कि ये नाम देते हुए वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि ये तो इनका स्वतः सिद्ध नाम है, पहले से ही नाम है इनका, मैं तो केवल अब प्रदान कर रहा हूँ। अर्थात वो सूचना दे रहे थे कि ये वही परम भगवान है, ये जो नाम राम है ये कोई नया नाम नहीं है, ये तो इनका पहले से नाम है। तो भगवान को राम नाम दिया गया। राम नाम के कई अर्थ होते हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। पद्म पुराण में श्री रामचंद्र जी के 108 नामों का वर्णन है, जिनमें ये राम नाम का भी वर्णन किया है कि इसका क्या अर्थ है। बहुत से नाम दिए हैं, उनके अर्थ बताए हैं। तो राम नाम का अर्थ बताते हुए कहते हैं, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि। ये जो रमन्ते योगिनो नन्ते, जो योगी होते हैं वो कोई सीमित आनंद, कोई सीमित चीज में आनंद नहीं लेते। किस में रमण करते हैं? अनंते, अनंत में। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद, सच्चे आनंद में वो रहते हैं। चिदात्मनि, चित, अर्थात जो शाश्वत है, ऐसे शाश्वत चीजों में वो आनंद लेते हैं। सत्यानंद चिदात्मनि, तो ऐसे भगवान के नाम को कहा गया परम ब्रह्म विधीयते इति राम पदे नासो। तो वहां कहा गया है कि रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो। तो ये जो राम पद है, राम नाम है, इसका क्या अर्थ है? परम ब्रह्म विदीयते, ये उस परम ब्रह्म को सूचित करता है। ये परम ब्रह्म का नाम है। वही परम ब्रह्म जो अनंत हैं, आनंद प्रदान करते हैं, योगियों के आनंद के स्रोत हैं। ये योगी जिस आनंद में रमण करते हैं, रमन्ते योगिनो नन्ते, उन्हें राम कहते हैं। इति राम पदे नासो। राम नाम का शब्द का अर्थ ये भी है कि वो भगवान जो भक्तों को आनंद देते हैं, जो आनंद के सागर हैं, जिनमें रमण करने से केवल आनंद प्राप्त होता है, ये भी राम नाम शब्द का अर्थ है। राम शब्द का अर्थ ये भी है जो लक्ष्मी देवी के साथ रमण करते हैं, रमा या लक्ष्मी देवी के साथ जो रमण करते हैं, उन्हें भी राम कहते हैं। तो ये भी राम शब्द का अर्थ है। वैसे आचार्यों ने अलग अलग स्थानों पर बहुत से अर्थ बताए हैं राम नाम के। रमन्ते योगिनो, योगी रमण करते हैं, या फिर वो कहते हैं रमणात्, रमणात् मतलब जिसमें भक्त आनंद लेते हैं, जिस नाम में, या वो सबको आनंद प्रदान करते हैं। और दो बहुत सुंदर अर्थ आचार्यों ने किए हैं राम शब्द के। उन्होंने इस राम शब्द को दो शब्दों से लिया, एक रति और दूसरा मही। मही यानी पृथ्वी, जैसे महीधर कहा जाता है, जो पृथ्वी को धारण करते हैं उसको महीधर कहते हैं। तो मही पृथ्वी को कहते हैं और रति आकर्षण को कहते हैं। तो रति का र और मही का मा, तो राम शब्द में राम शब्द का अर्थ करते हुए आचार्य समझाते हैं कि वो भगवान जो इस ब्रह्मांड में, इस जगत के या सारे ब्रह्मांड के आकर्षण का केंद्र हैं, उसे राम कहते हैं। दूसरे शब्दों में वो भगवान जो सारे ब्रह्मांड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें राम कहते हैं। तो ये राम शब्द का अर्थ है। और ये सत्य है, भगवान सबसे आकर्षक हैं और अपनी ओर सबको आकर्षित करते हैं, अपनी लीलाओं के द्वारा, अपने नाम के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा भगवान आकर्षित करते हैं। तो ये भी राम शब्द का अर्थ आचार्य समझाते हैं कि वो भगवान जो सारे ब्रह्मांडों के मही या सारे ब्रह्मांडों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, या दूसरे शब्दों में इन सारे ब्रह्मांडों में जो भी आकर्षक चीज है वो श्री राम का अंश है। ये भी एक अर्थ होता है। अगर कोई बहुत सुंदर है तो वो सुंदरता भगवान से आती है, कोई बहुत धनवान है तो वो धन भगवान से आता है, कोई बहुत बलवान है तो वो बल भगवान से आता है। इस चीज को समझना, ये राम शब्द का अर्थ है कि जो भी चीजें इस जगत में हैं, जो भी आकर्षक चीजें हैं, वो सब श्री राम से आती हैं, राम या भगवान उनके स्रोत हैं। तो इसलिए जब हम किसी आकर्षक चीज को देखें तो हमें कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। भगवद गीता में भगवान ने 7वें अध्याय में 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। तो कई बार प्रश्न आता है, ये सब भगवान क्यों कर रहे हैं? रसो हम अब सुकौंते या प्रभास्मी शशि सूर्य यो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं मां सानान, ये सब बहुत सारा वर्णन भगवान करते हैं। मार्गशीर्षो हम, मैं ये हूं, मैं महीनों में ये हूं, दैत्यों में ये हूं, दैत्या नाम हम प्रहलाद, सब क्या क्या कारण है? तो भगवान इसलिए करते हैं कि इन विभूतियों को देखते हुए, क्योंकि ये बड़े श्रेष्ठ चीजें हैं अपने अपने स्थानों में, तो हर श्रेष्ठ चीज को देखते हुए हम भगवान का स्मरण कर सकें। ये राम शब्द का अर्थ है। तो जब हम राम कहते हैं तो हमें जानना चाहिए कि जितनी भी आकर्षक चीजें इस जगत में हैं, वो सब भगवान का अंश मात्र है। भगवान कहते हैं, अपनी विभूतियों को प्रकट करते हैं भगवान। तो सारा सौंदर्य भगवान से आता है, सारा बल भगवान से आता है, सारा ऐश्वर्य भगवान से आता है, ज्ञान भगवान से आता है, वैराग्य भगवान से आता है, सब कुछ भगवान से आता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। सब कुछ भगवान से आता है। तो ये भगवान राम का शब्द का अर्थ है। और एक अर्थ आचार्यों ने समझाया, रावणस्य मरणम। वो कहते हैं कि भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ? रावणस्य मरणम, रावण को मरना था इसलिए हुआ। तो रावणस्य और मरणम, इन दो शब्दों में भी पहले दो शब्द लिए, पहले पहले शब्द रा और मा, तो वो राम हो जाता है। तो भगवान आए रावण को मारने के लिए, तो राम शब्द का अर्थ क्या है? जो रावण का वध करते हैं, रावणस्य मरणम। और हमारे लिए उसका अर्थ क्या है? कि वो भगवान, वो राम, ये जो शब्द है राम, ये इतना शक्तिशाली है कि जैसे जब भगवान प्रकट हुए थे तो उन्होंने रावण का वध किया था, ऐसे ही ये राम शब्द हमारे हृदय में बैठे हुए रावण का वध कर सकता है। कब? जब हम राम नाम की शरण लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये राम शब्द का अर्थ है कि जब हम राम कहें तो ये जान लें कि हम केवल राम ही मार सके रावण को। और इसी तरह केवल श्री राम की शरण जाकर, श्री कृष्ण की शरण जाकर ही हम अपने हृदय में बैठे हुए इस रावण को मार सकते हैं। अन्यथा ये रावण इस जगत में बहुत आकर्षित करता है हमें। जैसे रावण बहुत सी स्त्रियों को उसने आकर्षित किया था, जहां जाता था स्त्रियां प्रभावित हो जाती थी, विवाह करके आ जाता था। इसी तरह ये जो रावण हमारे हृदय में है, वो इस जगत के बहुत सारे आकर्षणों के प्रति आकर्षित हो जाता है और फिर भगवान राम से, कृष्ण से दूर चला जाता है। तो इस रावण को भी मारना जरूरी है, आवश्यक है, अन्यथा हम भक्ति नहीं कर सकते। अगर हमें रावण से प्रेम है तो राम से प्रेम नहीं हो सकता, बड़ा सरल है। अगर सीता देवी रावण की बात मान लेती तो राम को खो देती, लेकिन सीता देवी ने रावण की बात नहीं मानी, इसीलिए राम को प्राप्त किया, पुनः प्राप्त किया। हम सबको भी भगवान को पुनः प्राप्त करना है। हम सब भी खो चुके हैं भगवान को। आज ये सुनने में हमें कोई दंत कथा लगती है कि हम भी भगवान के साथ थे, हम भी भगवान की लीला में भाग ले सकते हैं, ये सब कथाएं लगती हैं। क्यों? क्योंकि भूल चुके हैं भगवान को। इस जगत में, इस लंका में रावण ने इतना प्रभाव कर दिया है कि अब हमें याद नहीं। हम सीता की स्थिति में नहीं है कि लंका में रहते हुए भी हमें रामचंद्र जी का सतत स्मरण हो। तो इसीलिए ये रावण ने इतना प्रभाव किया है, अब उसका एक ही उपाय है, फिर से भगवान का स्मरण करना, फिर से भगवान की शरण जाना। तो एक ही उपाय है रावण को परास्त करने का, नहीं तो ये रावण बहुत कई कई जन्मों तक यहीं पर बिठाए रखेगा। तो इसलिए इस रावण को परास्त करने के लिए राम नाम के आश्रय हमें लेना चाहिए। तो ये राम शब्द का अर्थ है। राम शब्द का और एक अर्थ है आत्मा राम। आत्मा राम अर्थात जो स्वयं में रमण करते हैं, जिनको किसी की आवश्यकता नहीं है आनंद के लिए, उन्हें आत्मा राम कहते हैं। हम सबको आनंद लेने के लिए किसी न किसी बाहरी चीज की आवश्यकता होती है, बिना उसके हम आनंद नहीं ले सकते। एक किसी व्यक्ति को कमरे में बंद कर दीजिए, उसको सारा खाने पीने की चीजें दे दीजिए, क्या वो आनंद में रहेगा? कुछ समय तक रह सकता है लेकिन फिर दुखी हो जाए, कमरे से बाहर जाना है, कुछ और चाहिए। लेकिन भगवान आत्मा राम है, इसीलिए उन्हें राम कहते हैं, आत्मा में रमण करते हैं। उनको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर उस आनंद को और बढ़ाने के लिए वो जीवों की उत्पत्ति कर देते हैं, ठीक है और बढ़ जाए। तो इसीलिए ये जानना चाहिए कि जब हम भक्ति करते हैं और हम कहते हैं कि हम भगवान के आनंद के लिए कर रहे हैं, तो एक दृष्टि से वो भगवान के आनंद के लिए नहीं है, क्योंकि भगवान को आपकी सेवा से आनंद नहीं आता। भगवान तो आत्मा राम है, संतुष्ट है, आप सेवा कीजिए या ना कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सेवा नहीं करेंगे तो भगवान दुखी हो जाएंगे या भगवान के पास कुछ कमी हो जाएगी। हम सेवा करते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए, हाँ भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं हमारी सेवा देखकर? क्योंकि भगवान देखते हैं कि हाँ अब ये जीव कष्टों से बाहर आ रहा है। तो भगवान की प्रसन्नता एक ही है, भगवान जब हम सबको कष्टों से बाहर आते हुए देखते हैं, इस भौतिक जगत से बाहर आते देखते हैं, वो प्रसन्नता है भगवान की। जब हम इसमें फंसा हुआ देखते हैं वो प्रसन्न नहीं होते हैं, भले हम इस जगत में बहुत बड़े व्यक्ति बन जाते हैं लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते। लेकिन हम छोटा सा प्रयास करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए, उससे भगवान प्रसन्न। ये देखकर इसलिए नहीं प्रसन्न होते कि ये मेरी सेवा कर रहा है, इसलिए प्रसन्न होते हैं कि इस सेवा के द्वारा ये कष्टों से बाहर आ रहा है, इसीलिए वो पिता है। लोग कहते हैं कि पिता है तो हमें कष्ट में क्यों रखा है, लेकिन हम कहते हैं वो पिता है, ये प्रमाण है कि वो हमारे कष्ट से जब हम बाहर आते हैं तो आनंदित होते हैं, मार्ग दे रहे हैं हमें बाहर आने का, ये पिता ही कर सकता है, इसीलिए वो पिता है, परम पिता, सबके पिता। तो ये राम शब्द का, ऐसे और भी बहुत से अर्थ पुराणों में दिए गए हैं राम शब्द के। तो फिर ये नाम रामचंद्र जी को दिया गया, श्री राम। और भरत को भी नाम, कैकेयी के पुत्र को भरत नाम दिया गया। भरत का अर्थ होता है जो जगत का भरण पोषण करे, उसे भरत कहते हैं। या फिर जो व्यवस्थापन में बहुत दक्ष हो, भरण पोषण कर सके सबका ठीक ठाक, तो उसे भी कहते हैं। लेकिन आचार्यों ने एक महत्वपूर्ण अर्थ को बताया है भरत का। वो कहते हैं कि भरत नाम इसलिए दिया गया उन्हें क्योंकि वो आगे चलकर दिखाने वाले थे कि अगर हमें सारे जगत का ऐश्वर्य मिल जाए, सारी सुविधा मिल जाए, राज्य मिल जाए, लेकिन अगर श्री कृष्ण की सेवा ना हो, श्री राम की सेवा ना हो, तो वो केवल भार है। इसीलिए उन्हें भरत नाम दिया गया। और भरत ने ये आगे दिखलाया कि जब भरत को सब कुछ मिल गया था, रामचंद्र जी तो चले गए थे, जब भरत वापस आए वो तो वन में चले गए थे, लक्ष्मण भी चले गए थे, पिताजी की मृत्यु हो गई थी, कोई विरोध करने वाला नहीं था, पूरा राज्य था उनके पास, दे रहे थे उनको, गुरु कह रहे थे ले लो, माँ कह रही थी ले लो, लेकिन उन्होंने दिखलाया कि अगर श्री राम के बिना ये जितना भी ऐश्वर्य है ये केवल एक भार है, बोझा है, इसीलिए भरत कहलाए। और ये सत्य है, हमारा ये जो सिर है अगर श्री कृष्ण के सामने झुकता नहीं है तो वो केवल एक बोझा है सर पे। इस सिर को झुकना चाहिए भगवान के सामने, बोझा बन जाता है। कई बार हमने चर्चा किया है भगवान को भावग्राही जनार्दन कहते हैं, भक्तों को सारग्राही कहते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वो सार को ग्रहण करते हैं। इस भौतिक जगत का सार क्या है, अगर किसी से पूछा जाए तो क्या सार देंगे? हम कहेंगे भौतिक जगत का सार कष्ट है, दुखालय अशाश्वतम, ये सार है। ये सार नहीं है इस भौतिक जगत का। इस भौतिक जगत का सार है कृष्ण भक्ति। भगवान ने बनाया ही जगत इसीलिए है कि हम कृष्ण भक्ति के महत्व को समझ सके, जान सके कि कृष्ण के बिना केवल कष्ट है। तो सारग्राही भक्त होते हैं और अन्य सब भारवाही, केवल भार को ग्रहण करते हैं। तो भरत अपने उदाहरण से हमें सिखलाते हैं कि इस जगत का ऐश्वर्य, इस जगत का सारी सुविधा, राज्य, रत्न इत्यादि केवल भार है। भरत ने स्वीकार नहीं किया अगर उसमें श्री कृष्ण की सेवा नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, भागवत में वर्णन है कि वो कहते हैं कि अलग अलग प्रकार की मुक्तियां हैं, सारिष्टि, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य एकत्व में एवच, ये पांच प्रकार की मुक्तियां हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो इसको स्वीकार नहीं करते। दिए नाम मैं देता हूं, न गृहणाति, लेते नहीं है। क्यों? बिना मत सेवनम जनहा। अगर हमें मुक्ति भी मिल जाए और उसमें भगवान की सेवा नहीं है तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, वो मुक्ति भी बेकार है। जैसे लोग कहते हैं कि हमें जाकर विलीन हो जाना है, वही अंत है। कई बार लोग कहते हैं मुक्ति मतलब विलीन हो जाना, ये मुक्ति नहीं है। तो भागवत में कहा गया है कि अगर आपको सब कुछ मिल जाए, मुक्ति भी मिल जाए, बिना मत सेवनम, सेवा नहीं है भगवान की उसमें, तो उसको स्वीकार नहीं करते भक्त। फिर भक्तों के लिए नरक अच्छा है, नरक में रहकर भगवान की सेवा करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जाकर मुक्ति नहीं चाहिए अगर वहां सेवा नहीं है। ये भक्ति है और ये भक्त का भाव है। तो भरत अपने उदाहरण से, अपने नाम से ही हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें भारवाही नहीं बनना है, हमें केवल भार ग्रहण करने के लिए इस जगत में नहीं जीना है, बोझा नहीं बनना है पृथ्वी पर, हमें सार ग्राही बनना है, इस जगत के सार को ग्रहण करना। वेदेश्च सर्वेर हमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं वेदों से अगर कुछ ग्रहण करने लायक चीज है तो एक ही है, वो मैं श्री कृष्ण। ये सार है, इस जगत का सार क्या है, कैसे हम इस जगत के सार को भक्ति मान सकते हैं। कृष्ण ने समझाया है भगवत गीता में, आप पेड़ों को देखिए, पर्वतों को देखिए, कृष्ण का स्मरण कीजिए, ये सार है। भागवत में वर्णन है कि चंद्रमा और सूर्य भगवान की आंखें हैं, पर्वत भगवान की हड्डियां हैं, पेड़ भगवान के रोए हैं, स्मरण कीजिए भगवान का, ये सार है और ये भक्ति है। जिस चीज को देखें, जिस वस्तु को देखें, जिस वस्तु का उपयोग करें, श्री कृष्ण का स्मरण करें। प्रभुपाद उदाहरण देते थे अपने चश्मे के द्वारा, उन्होंने उदाहरण दिया एक भक्त को कि टेबल पर चश्मा पड़ा है, इसे देखकर क्या याद आता है, प्रभुपाद आपकी याद आती, आपका चश्मा है। इसी तरह इस सारे जगत को देखकर क्या याद आता है, श्री कृष्ण का है, ये सार है। तो केवल अपना दृष्टिकोण बदलना है। अभी हमें जगत दुखालय में लगता है, अशाश्वतम लगता है, बेकार लगता है, कष्टमय लगता है, केवल बदलना है। भगवद गीता में और क्या कहा कृष्ण ने, बदलो इसे, पानी को देखो मेरा स्मरण करो, सूर्य को देखो मेरा स्मरण करो, चंद्रमा को देखो मेरा स्मरण करो, शुद्ध हो जाएंगे और पूर्ण आनंद में रहेंगे, अन्यथा केवल भार। तो भरत अपने उदाहरण से इसको सिखलाते हैं। तो ये भरत नाम दिया और फिर लक्ष्मण नाम दिया उनको। लक्ष्मण अर्थात जो सारे शुभ लक्षणों से चिन्हित हैं, जिनके ऊपर सारे, जिनके पास सारे शुभ लक्षण हैं, उन्हें लक्ष्मण कहते हैं। यह एक अर्थ ये भी है जो लक्ष्मी को प्रदान कर सकते हैं वो भी लक्ष्मण कहलाते हैं। लक्ष्मी अर्थात भगवान की शक्ति, और लक्ष्मण जी ये गुरु के सूचक हैं, आदि गुरु हैं लक्ष्मण जी। तो एक गुरु ही भगवान की शक्ति को हमें प्रदान कर सकते हैं, इसलिए वो लक्ष्मण कहलाते हैं। और सारे शुभ लक्षणों से चिन्हित हैं अर्थात लक्ष्मण अपने जीवन में क्या करने वाले हैं, लक्ष्मण अपने जीवन में अपने आचरण से दिखलाने वाले हैं कि शुभदत्व क्या होता है, क्या शुभ कहलाता है। भक्ति के छह लक्षणों का वर्णन करते हुए रूप गोस्वामी कहते हैं कि उसका एक लक्षण है शुभदा, शुभदत्व प्रदान करती है भक्ति। और भक्ति क्या है ये आदि गुरु लक्ष्मण जी हमें सिखलाते हैं, इसीलिए उनका नाम है लक्ष्मण। जो सिखला रहे हैं कि शुभ कैसे आपके जीवन में हो सकता है, शुभदत्व कैसे आ सकता है। तो ये भक्ति का लक्षण है, भक्ति के लक्षणों का वर्णन किया रूप गोस्वामी ने, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्षा लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चस। तो छह लक्षण बताए भक्ति के, उनमें से एक है शुभदा, जो शुभदत्व, भक्ति करने से जीवन में सब शुभ हो जाता है, फिर हमें इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी भक्ति बड़ी गंभीर होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, फिर जीवन में कष्ट आएंगे। ये तो भौतिक जगत है, कष्टों से दूर हो ही नहीं सकते, समुद्र में रहकर गीले नहीं हो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समुद्र में रहकर भले ही गीला हो रहा है लेकिन उस समुद्र से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढता है। वो गीला हो रहा हूं उसी में नहीं रहता, वहां अपने को सुखाने का प्रयास नहीं करता है, ये तो मूर्खता है। समुद्र में रहकर अगर अपने आप को सुखाने का या पोंछने का प्रयास करेंगे तो ये मूर्खता है। बुद्धिमानी क्या है, कैसे बाहर जाना है, अपने आप सूख जाएंगे। इसी तरह ये जगत है, भौतिक जगत कष्टों का सागर है, इसमें कष्टों से दूर जाने का प्रयास नहीं करना है, ये तो मूर्खता है। कष्ट तो रहेंगे ही, जैसे जल है, समुद्र में जल रहेगा ही, तो फिर क्या करना है, इससे बाहर जाने का मार्ग ढूंढना, बस सब कुछ आ जाएगा अगर हम केवल यहां से बाहर जाने का मार्ग ढूंढते। तो ये लक्ष्मण है जो हमें आदि गुरु के रूप में इस जगत के परे जाने का मार्ग प्रदान करते हैं। तो क्यों लक्ष्मी जी को प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वो गुरु हैं और भगवान की शक्ति नाम के रूप में, लीलाओं के रूप में, ज्ञान के रूप में हमें वो प्रदान करते हैं, और ये कृपा है। लक्ष्मण जी या गुरु, वैसे कहा जाता है कि भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली भगवान का नाम है, और भगवान के नाम से ज़्यादा शक्तिशाली भगवान के भक्त हैं, क्योंकि वो उस नाम को प्रदान कर सकते हैं। हाँ, मूल शक्ति भगवान है, ये नहीं भूलना चाहिए। जब हम कहते हैं कि भगवान के भक्त ज़्यादा कृपालु हैं भगवान से, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान से श्रेष्ठ हैं। शक्ति और कृपा तो भगवान से ही प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग रोज सुबह गाते हैं, संसार दावा नलनीध लोका त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो कहाँ से प्राप्त किया है, जो कृपा को गुरु हमें प्रदान कर रहे हैं वो कृपा कहाँ से आई है। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्यम, जो गुणों के सागर हैं श्री कृष्ण, उनसे वो कृपा प्राप्त कर रहे हैं और उस कृपा को हमें प्रदान कर रहे हैं, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। तो इसलिए मूल कृपा, मूल शक्ति भगवान से ही आती है, इसको नहीं भूलना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्हीं भगवान से शक्ति प्राप्त करके उसको हमारे जैसे अयोग्य लोगों में बांट देते हैं, इसीलिए गुरु ज्यादा कृपालु कहलाते हैं। भगवान योग्य तक देखते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों का त्याग करो, मेरी शरण में आओ, तब मैं तुम्हें कृपा दूंगा। भक्त नहीं देखते, प्रभुपाद गए कहा केवल जप करो, बस कुछ मत करो, केवल हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ऐसे ये लक्ष्मण, और फिर अंतिम नाम दिया गया शत्रुघ्न। शत्रुघ्न मीन्स मतलब जिनके नाम से ही शत्रु भाग जाए दूर, से शत्रुघ्न कहते हैं। ऐसी कई लीलाएं हैं शत्रुघ्न की, हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कैसे ये सब होने के बाद भी कई स्थानों पर जाकर उन्होंने अकेले युद्ध किया था। हम लोग जब वृंदावन जाते हैं तो वहां पर भी एक स्थान है मधुवन, तो वहाँ पर भी हम जब जाते हैं तो हमने देखा है कि वहाँ एक स्थान है जहाँ शत्रुघ्न ने आकर युद्ध किया था, उस एक राक्षस को मारा था वहाँ पर। तो ऐसे कई स्थान हैं, पद्म पुराण में बहुत सी कथाएं दी गई हैं शत्रुघ्न की, कि कैसे शत्रुघ्न ने अकेले जब घोड़ा गया था अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा गया था, तो शत्रुघ्न गए थे साथ में, चलते चलते हिमालय पर पहुंच गए थे, और हिमालय में एक स्थान पर जाकर वो घोड़ा एक बगीचे में प्रवेश करता है और स्तब्ध हो जाता है, उसके अंग सारे स्तब्ध हो जाते, हिल नहीं पाता घोड़ा। तो बड़ा आश्चर्य होता है, सब भागे भागे जो सैनिक होते शत्रुघ्न के पास आते हैं, आप कुछ कीजिए कि ये तो घोड़ा स्तब्ध हो गया, हिल नहीं पा रहा है। तो उस समय फिर शत्रुघ्न गए थे और उन्होंने एक ऋषि से बात की, वो चर्चा हम लोग करेंगे जब उस पर आएंगे तुम, और कई लोगों से युद्ध किया उन्होंने, अकेले जाते थे। तो शत्रुघ्न मतलब जो शत्रु को, जिसके नाम से ही शत्रु भाग जाए दूर, उसे शत्रुघ्न कहते हैं। और भक्ति की दृष्टि में अगर हम शत्रुघ्न का नाम लेते हैं भगवान के संबंध में, तो फिर हमारे जितने भी शत्रु हैं वो हमसे दूर भाग जाएंगे इस जगत में, इसलिए नामों का महत्व है। तो ऐसे चार नाम, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये नाम दिए गए। रामचंद्र जी कौशल्या से प्रकट हुए थे और भरत कैकेयी से, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये सुमित्रा से प्रकट हुए थे। तो ऐसे इन सब का आविर्भाव हुआ और सारी अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव, सब इतने प्रसन्न थे, इतने वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद अब उनको अपना राजकुमार मिला था। और केवल कोई साधारण राजकुमार नहीं, भगवान प्रकट हुए थे, तो सारे देवी देवता आते। एक स्थान पर शिवजी पार्वती से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, जब रामचंद्र जी ने जन्म लिया था तो मैं भी एक साधारण मनुष्य के रूप को लेकर वहाँ गया था और मैंने भी उनके दर्शन किए थे, तो स्वयं शिव जी कहते हैं। तो ऐसे कई देवता आए जिन्होंने श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया उस समय, और फिर ये उत्सव बहुत आराम से हुआ। और उसके बाद भगवान ने अपनी बाल लीलाएं करनी प्रारंभ की। वैसे वाल्मीकि मुनि ने रामायण में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया, उन्होंने सीधे विश्वामित्र मुनि के आगमन से फिर आगे प्रारंभ किया। लेकिन अन्य स्थानों पर पद्म पुराण और अध्यात्म रामायण इत्यादि में बहुत सुंदर लीलाएं दी हैं भगवान की। भगवान ने भी बाल लीलाएं की, भगवान ने भी मटकी फोड़ी श्री रामचंद्र ने, जैसे श्री कृष्ण ने तोड़ी थी। तो इन बाल लीलाओं का वर्णन अगले मंगलवार को करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे।